राधिका जी, आप यहाँ? अक्षय ने हैरान परेशान निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया।
जी, वो एक्चुअली ये मेरी छोटी बहन है अर्पिता, इसके गार्डियन के तौर पर मुझे यहाँ बुलाया गया था,
राधिका ने अर्पिता की हथेली थामते हुए जवाब दिया।
ओह, मतलब माधव की बहन को छेड़ने वाले लड़कों की रिपोर्ट आपकी बहन ने लिखवाई थी।
जी, राधिका ने सहजता से हामी भर दी। फिर एक नज़र माधव को देखने के बाद शिखा की ओर नज़रें घुमाते हुए नर्म कोमल स्वर में सवाल किया।
तुम ठीक हो?
शिखा ने झट से हामी भर दी। राधिका कुछ झिझकते हुए उसकी ओर बढ़ी और प्यार से उसके गाल को अपनी हथेली से छू दिया।
तुम मेरी बहन जैसी ही हो, इसलिए तुमसे बड़ी और एक लड़की होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ कि ऐसे आवारा लड़कों से डरते नहीं हैं, हिम्मत से उनका सामना करते हैं। अगर एक बार उन्हें ठीक से सबक सिखा दिया जाए तो वो खुद दोबारा परेशान करने नहीं आते। अगर हम डरकर चुप रह जाते हैं या सोचते हैं कि हमारे बोलने से बात बढ़ेगी, बदनामी होगी, इससे अच्छा चुप रह जाते हैं, तो इससे सिर्फ उनकी हिम्मत बढ़ती है। आज वो हम पर कमेंट करेंगे और हम चुप रहे तो कल को हमें परेशान करना शुरू कर देंगे, तब भी चुप रहे तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और वो आगे चलकर हमारे साथ गलत भी कर सकते हैं। इसीलिए समय रहते उन्हें सबक सिखा देना चाहिए। खुद से नहीं कर सकती तो अपने भाई से कहो। तुम तो लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसा बड़ा भाई है, और अगर बात बिगड़े तो पुलिस है। जो गलत करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई बुराई भी नहीं है और डरने वाली भी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होती है, फिर सब सही हो जाता है। एक बड़ी बहन की तरह राधिका ने बहुत प्यार से शिखा को समझाया था और वो टकटकी लगाए बस उसे देखती ही रह गई थी। माधव की निगाहें भी उसी पर ठहरी थी और ये देखकर अक्षय मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आगे से कोई भी बात हो तो अपने भाई को बताना, अकेले अकेले परेशान मत होना, समझी? शिखा ने सहमति में सर हिलाया। राधिका ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को यूं थपथपाया जैसे हिम्मत दे रही हो उसे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माधव ने दिल से अर्पिता का शुक्रिया अदा किया था। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। हमारे पापा कहते हैं कि गलत होते देखो तो आवाज़ ज़रूर उठाओ, और दीदी कहती हैं कि हर सिचुएशन का सामना पूरी हिम्मत से करो। अगर तुम किसी के काम आ सको तो जितना हो सके उसकी मदद करो। अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा, स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, गलत होते देखकर भी नज़रें फेर कर निकल जाएगा, तो इस दुनिया में से इंसानियत ही खत्म हो जाएगी और शैतान का राज आ जाएगा। मैंने ये उन्हीं से सीखा है, वो मेरी रोल मॉडल है, मेरी लेडी सुपर हीरो। वो बेफिक्री से मुस्कुराते हुए लापरवाही से बोल पड़ी। अर्पिता का जवाब सुनकर माधव की निगाहें एक बार फिर राधिका पर जा ठहरी।
मैम, एक रिक्वेस्ट थी। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद राधिका इंस्पेक्टर से अकेले में बात करने आई थी।
जी, कहिए। राधिका ने तिरछी नज़रों से अंदर सेल में बंद लड़कों को देखा जिसकी धुलाई हो रही थी, फिर इंस्पेक्टर की ओर नजरें घुमाते हुए गंभीर स्वर में बोली, ज़रा तबीयत से खातिरदारी कीजिएगा इनकी, ताकि दोबारा किसी लड़की को छेड़ने तो क्या उसकी ओर गलत नज़रों से देखने की हिम्मत भी ना करे, और साथ में अच्छे से समझा भी दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर ये मेरी बहन या उस लड़की के लिए खतरा बन जाए।
आप निश्चिंत रहिए, ऐसे लड़कों को सीधा करना हमें बहुत अच्छे से आता है, आपकी बहन या दूसरी लड़की को कोई परेशानी नहीं होगी।
इंस्पेक्टर का आश्वासन पाकर राधिका की चिंता कुछ कम हुई। बड़ी बड़ी हिम्मत वाली बातें करना अलग बात है, पर ऐसे लड़कों से उलझने पर लड़की के मन में एक डर पनप ही जाता है कि हमारा आज का उठाया कदम कहीं आगे चलकर हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। वैसे ही राधिका को भी अपनी बहन और शिखा की चिंता थी, जो अब कुछ कम हो गई। वो अपना पर्स लेकर थाने से बाहर निकली, जिसके बहाने वो वापस अंदर आई थी ताकि अकेले में इंस्पेक्टर से बात कर सके। बाहर एक तरफ अक्षय, शिखा और माधव खड़े थे, तो उनसे चंद कदमों की दूरी पर खड़ी थी अप्पू, जो कभी माधव और शिखा को देखती तो कभी दीदे फाड़कर अक्षय को देखती। जैसे ही राधिका वहां पहुंची, अप्पू तुरंत ही उसके पास पहुंच गई और अक्षय की ओर इशारा करते हुए हैरानगी से सवाल करने लगी, दी, ये तो अक्षय जी हैं, अनु के हस्बैंड। राधिका ने उसके मन के भावों को भांपते हुए उसकी बात को पूरा किया। इसके साथ ही अर्पिता के चेहरे के भाव बदल गए, फुदकते हुए वो अक्षय के पास पहुंच गई। वो खुशी और एक्साइटमेंट से भर उठी और उसकी चहकती आवाज़ ने सबका ध्यान उसकी ओर खींचा।
मुझे पता ही था, मैं आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप अनु दी के हस्बैंड ही हैं। आई मस्ट से, फोटो में आप जितने हैंडसम दिखते हैं, सामने में उससे भी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं। आपको पता है मैं कब से आपसे मिलना चाह रही थी, आप तो मुझे फोटो में ही पसंद आ गए थे, और जैसे जैसे राधिका दी के मुंह से आपकी तारीफ सुनती गई, मैं तो आपकी डाई हार्ट फैन बन गई थी। अनु दी इतनी प्यारी हैं, मुझे आपको भी देखना था, और आज आपसे मिलने के बाद तो मैं आपकी और ज्यादा मुरीद हो गई हूँ। इतने कमाल दिखते हैं आप, इतने अच्छे से आपने खुद को मेंटेन किया हुआ है, कोई आपको देखकर नहीं कह सकता कि आप दो दो बच्चों के बाप हैं, ऐसी गजब पर्सनैलिटी है आपकी। आज मुझे ये कहते हुए ज़रा भी अफसोस नहीं कि आप वाकई में अनुदी को डिज़र्व करते हैं, आप दोनों को भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा।
अर्पिता खुद में ही मग्न बोले जा रही थी। पहले तो अक्षय उसकी बात सुनकर चौंक गया, पर फिर आहाना का जिक्र होते ही उसके लबों पर सौम्य सी मुस्कान ठहर गई। बोलते हुए अर्पिता का ध्यान अक्षय के बगल में खड़े माधव पर गया, जो हैरान परेशान सा आंखें भाड़े उसे ही देख रहा था। अर्पिता ने उसे भी अपनी बातों में शामिल कर लिया। वैसे तो आप भी काफी हैंडसम हैं और पर्सनालिटी तो आपकी भी कुछ खराब नहीं, पर वो क्या है ना, डॉक्टर, पुलिस और आर्मी, ये जो यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं ना, इनसे कुछ अलग ही ऑब्सेशन है मुझे। उनकी पर्सनालिटी ही अलग होती है और जब अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं तो कमाल लगते हैं, इसीलिए यहाँ अक्षय जी जो आपसे बाजी मार गए। अर्पिता की आंखें शरारत से चमकी और लब दिलकशी से मुस्कुरा दिए। माधव तो अब भी हैरान परेशान सा आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि वो बीच में कहां से आ गया, जबकि अक्षय को उसके अंदर अंतरा की झलक नजर आई। वो भी तो यूं ही बेफिक्री से जो दिल में आता है बोल जाती है, थोड़ी सी नादान और शरारती है, पर बातें करने में उसका कोई जवाब ही नहीं। अक्षय के लबों पर बिखरी मुस्कान गहरा गई। पर मैं तो अभी डॉक्टर कोर्ट में नहीं, अक्षय का ये कहना था कि अर्पिता ने फट से जवाब दिया। पर हैं तो डॉक्टर ना, इसीलिए मुझे आप बड़े पसंद आए। आप भी हमें काफी पसंद आई, अपनी दीदी जैसी ही आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन हैं, बस उनसे ज्यादा क्यूट हैं और बातों में थोड़ी आगे हैं। अपनी तारीफ सुनकर अर्पिता खुद पर इतराते हुए खिलखिला उठी, जबकि राधिका इस पूरे दौरान गंभीर बनी रही। अक्षय ने उसे और माधव को देखा, फिर अर्पिता और शिखा को देखते हुए बोला, आप दोनों ने आज बहुत कुछ फेस किया, एग्जॉस्ट हो गई होंगी, चलिए मैं आप दोनों का मूड क्रैश करवा दूं। हाँ हाँ चलिए, इसी बहाने मैं आपसे कुछ और बातें भी कर लूंगी। अप्पू मैडम तो झट से मान गई, पल भर को भी उसके मन में अपनी बड़ी बहन का ख्याल ना आया, जबकि शिखा सवालिया निगाहों से माधव को देखने लगी थी। सॉरी, अभी हमें घर जाना होगा, पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जिस तरह से हड़बड़ी में घर से निकली हूँ, जब तक हम दोनों सही सलामत घर नहीं पहुँच जाते वो परेशान होते रहेंगे। राधिका ने विनम्रता से अक्षय के ऑफर को ठुकरा दिया और अर्पिता को आंखों से कुछ इशारा किया, जिस पर उसने मुँह बना लिया।
डोंट वरी, बाहर मेन सड़क तक ही लेकर जा रहा हूँ मैं इन्हें, वहाँ दुकानें हैं, कुछ ठंडा पी लेंगे, फिर वहीं से निकल भी जाएंगे, कार भी वहीं खड़ी है। आप अंकल को फोन करके कह दीजिए कि वो परेशान ना हो, यहाँ सब ठीक है, और आप भी आ जाइए साथ, कुछ ठंडा वंडा पी लीजिएगा, फिर चली जाइएगा घर। अक्षय ने सौम्यता से अपनी बात कही और अब की बार राधिका उसे रोक ना सकी। माधव ने भी शिखा को जाने की इजाज़त दे दी। अक्षय दोनों को लेकर आगे बढ़ गया। राधिका ने घर पर फोन लगाया, पर फिर घर जाकर बात करने का छोड़कर कॉल काट दी और उनके पीछे जाने के कदम बढ़ाए ही थे कि माधव की ठहरी हुई गंभीर और शांत आवाज ने बेड़ियों जैसे उसके कदमों को जकड़ लिया। राधिका जी, कुछ देर ठहर जाएंगे, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। राधिका के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। जिस सिचुएशन से वो भागना चाह रही थी उसी में फंसती नजर आ रही थी। पल भर को वो कुछ विचलित हुई, पर अगले ही पल खुद को संभालते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर पलट गई। जी कहिए। राधिका के चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे और लहजा ऐसा था जैसे किसी अनजान शख्स से बात कर रही हो। माधव पलभर को उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए तारीफी निगाहों से उसे देखा। आपकी बहन भी आपकी ही तरह बहादुर, निडर और स्ट्रांग है, माधव ने उसकी तारीफ की थी, जिसे सुनकर राधिका की आंखों के आगे उससे सालों पहले हुई मुलाकात का दृश्य घूम गया। पलभर को चेहरे पर कोमल भाव उभरे और वो भी हौले से मुस्कुरा दी। थैंक यू, असल में हमारे पास कोई बड़ा भाई नहीं था जो हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाए, इस तरह की मुसीबतों से हमें बचाए, तो हमारे पापा ने हमें अपने लिए खुद लड़ना और निडर होकर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया है। ये उन्हीं की दी हुई सीख का असर है और वही हमारी हिम्मत है। आपके पापा ने बहुत अच्छी परवरिश की है आपकी और आपकी बहनों की। वो तो हम हैं ही, राधिका ने खनकते स्वर में जवाब देते हुए उसकी बात पर सहमति जाहिर की। जो चेहरा कुछ वक्त पहले तक तनाव से भरा था, अब वहाँ सुकून के भाव मौजूद थे। हमारे पापा ने कभी अपनी बेटियों को बेटे से कम नहीं समझा और ना ही उन्हें कमजोर या कोमल बनाया। उनके लिए हम ही उनकी बेटियां थीं और हम ही उनके बेटे, हम ही उनकी कमजोरी थे तो हम ही उनकी ताकत भी थे। उन्होंने बेटों जैसी परवरिश की है हमारी, कभी हमें यह एहसास दिलाकर कोई रोक टोक नहीं की कि हम लड़की हैं तो ये नहीं कर सकते या वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसी बात पर कई बार मम्मी से उनकी बहस भी हो जाती थी। वो पापा पर गुस्सा करती थीं कि बेटियों को बिल्कुल लड़कों जैसा बना लिया है, किसी की एक गलत बात बर्दाश्त नहीं करती हैं, आगे चलकर कोई इनसे शादी नहीं करेगा और अगर शादी हो गई तो रोज़ शिकायत आएगी कि बहू के रूप में दामाद भेज दिया है। तब पापा बड़े ही गर्व से कहते थे कि उनकी बेटियां उनका गुरूर हैं, उनकी ताकत हैं, वो कभी अपने पापा का सर किसी के आगे झुकने नहीं देंगी, क्योंकि उनके पापा ने अगर उन्हें गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया है तो रिश्तों की मर्यादा में रहकर उन्हें निभाना और उन्हें बनाए रखने के लिए छोटी मोटी बातों को सहना भी सिखाया है। इसके आगे मम्मी कुछ कह नहीं पाती थी और हर बहस में पापा की जीत होती थी। फिर तो आप और आपकी बहनें बहुत लकी हुई जो उन्हें इतने अच्छे और सपोर्टिव फादर मिले। वो तो हम हैं ही, राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। To be continued. अब क्या करेगी राधिका और क्या होगा आगे।